एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी किताब में जिसने कई साल पहले ही दुनिया को आने वाले जैविक खतरों के प्रति सचेत कर दिया था। ये किताब है रिचर्ड प्रेस्टन की द हॉट जोन।
और क्या जबरदस्त किताब है ये। इबोला और मारबर्ग जैसे मतलब बेहद खतरनाक वायरसों की सच्ची रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों पर आधारित है।
हाँ,
आज के समय में, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद, ये समझना तो और भी जरूरी हो गया है कि ये अदृश्य दुश्मन कैसे उभरते हैं, कैसे फैलते हैं और मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं।
बिल्कुल। आज हम इसी किताब के सार, इसके जो चौंकाने वाले तथ्य हैं और गहरे संदेशों पर बात करेंगे जो हमें उपलब्ध स्रोतों से मिले हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेस्टन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे थे और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक क्यों है। तो चलिए इस रोमांचक और थोड़ी डरावनी ज्ञान यात्रा पर चलते हैं।
बिल्कुल, शुरुआत करते हैं लेखक रिचर्ड प्रेस्टन से। एक दिलचस्प बात यह है कि प्रेस्टन खुद कोई वायरोलॉजिस्ट या महामारी विशेषज्ञ नहीं है।
हाँ, ये बात है।
वे एक जाने माने अमेरिकी पत्रकार और लेखक हैं जो द न्यूयॉर्कर जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन के लिए जाने जाते हैं।
हाँ, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है ना? वो जटिल वैज्ञानिक विषयों को पकड़कर उन्हें बेहद रोमांचक मानवीय कहानियों में बदल देते हैं। उनकी पत्रकारिता की पृष्ठभूमि उन्हें
हाँ, इंटरव्यू लेने,
हाँ, कहानी के अहम किरदारों से सीधे बात करने और तथ्यों को पूरी सटीकता के साथ पेश करने की काबिलियत देती है।
सही बात कहा। वो एक बाहरी मगर बेहद उत्सुक और कह सकते हैं चिंतित व्यक्ति के नजरिए से लिखते हैं। वो ऐसे सवाल उठाती हैं जो हमारे आपके जैसे आम लोगों के मन में आएंगे।
अच्छा,
इसी वजह से वो वायरोलॉजी और सैन्य जैव सुरक्षा जैसी मुश्किल दुनिया को भी एक तेज रफ्तार थ्रिलर की तरह पेश कर पाती हैं। ये किताब दरअसल उनके ही एक मशहूर न्यूयॉर्कर लेख क्राइसिस इन द हॉट जोन का ही विस्तार है।
उनकी लिखने की शैली वाकई कमाल की है। सस्पेंस है, किरदारों का भावनात्मक उतार चढ़ाव है और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का ऐसा सजीव और कभी कभी तो बेहद खौफनाक विवरण कि पढ़ते हुए लगता है जैसे वायरस का खतरा हमारे आसपास ही मंडरा रहा हो। वो विज्ञान को कहानी के जरिए जीवंत कर देते हैं। तो फिर ये किताब द हॉट जोन आखिर है किस बारे में? आसान शब्दों में कहें तो ये एक सच्ची घटनाओं पर आधारित थ्रिलर है।
हाँ,
ये फिलोवायरसेस के परिवार पर केंद्रित है जिसमें कुख्यात इबोला और उसका उतना ही खतरनाक रिश्तेदार मारबर्ग वायरस शामिल है। किताब इनकी उत्पत्ति और इनके द्वारा मचाई गई लगभग विनाशकारी तबाही का इतिहास बताती है।
और किताब का मुख्य तर्क काफी सीधा और चेतावनी भरा है। प्रेस्टन कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान मतलब तथाकथित विकास के नाम पर प्रकृति के नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों में घुसपैठ कर रहा है, जंगल काटना, खनन,
हाँ,
जंगल काट रहा है, खनन कर रहा है, नई बस्तियां बसा रहा है, हम अनजाने में उन उभरते हुए बेहद घातक वायरसों के संपर्क में आ रहे हैं जिनका ना तो हमारे पास कोई इलाज है ना कोई टीका।
बिल्कुल।
किताब का मकसद इन वायरसों से जुड़े असल जीवन के डरावने अनुभवों को सामने लाकर हमें इस खतरे के प्रति आगाह करना है।
ये किताब हमें एक हैरान करने वाले सफर पर ले जाती है, अफ्रीका के घने वर्षावनों की गहराई से लेकर अमेरिका के आधुनिक भीड़भाड़ वाले शहर वॉशिंगटन डीसी के बाहरी इलाके तक।
हाँ,
ये दिखाती है कि कैसे किसी दूरदराज जंगल से निकला एक सूक्ष्म वायरस हमारे आधुनिक आपस में जुड़े महानगरों के दरवाजे तक पहुंच सकता है। ये वायरोलॉजी, महामारी विज्ञान, सेना द्वारा जैव खतरों से निपटने के तरीके, मतलब वो मिलिट्री बायोहैजर्ड कंटेनमेंट,
हाँ, और पारिस्थितिकी जैसे कई विषयों को छूते हैं।
बिल्कुल।
तो संक्षेप में ये किताब एक साथ कई काम करती है। ये इतिहास का सबक सिखाती है, विज्ञान का परिचय देती है, एक सैन्य ऑपरेशन का रोमांचक ब्यौरा देती है और भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी भी जारी करती है। ये उस बेहद परेशान करने वाले सवाल का जवाब तलाशती है, क्या होता है जब एक नन्हा सा शिकारी जो इंसानी सभ्यता के बड़े हिस्से को मिटाने की ताकत रखता है किसी अनजान जंगल के अंधेरे से निकलकर हमारे शहरों तक पहुंच जाता है। प्रेस्टन का मानना है कि ऐसा होना अगर का नहीं बल्कि कब का सवाल है।
बाप रे, किताब को मुख्य रूप से चार हिस्सों में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। पहला भाग है द शैडो ऑफ माउंट एल्गोन,
और शुरुआत ही ऐसी है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। कहानी 1980 में केन्या में रहने वाले एक फ्रांसीसी व्यक्ति चार्ल्स मोनेट से शुरू होती है। मुनेट माउंट एल्गोन पहाड़ पर बनी एक रहस्यमयी किटुम गुफा घूमने जाते हैं और लौटने के कुछ ही दिनों बाद अब बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं।
क्रिस्टन ने मुनेट की बीमारी का जो विवरण दिया है वो बहुत ही भयावह है। उन्होंने बताया है कि कैसे उनके शरीर के अंदरूनी संयोजी ऊतक, मतलब कनेक्टिव टिश्यूज,
हाँ, जो अंगों को जोड़े रखते हैं,
वो गलने लगते हैं, उनका व्यक्तित्व बिखरने लगता है और फिर शरीर के हर संभव रास्ते से खून बहना शुरू हो जाता है। प्रेस्टन इसे क्रैशिंग एंड ब्लीडिंग आउट कहते हैं,
जिसका मतलब है शरीर के अंदरूनी तंत्र का पूरी तरह फेल हो जाना और अनियंत्रित रक्तस्राव। बहुत भयानक।
और सबसे डरावनी बात यह है कि उनकी मौत नैरोबी जा रही एक सामान्य कमर्शियल फ्लाइट में होती है। सोचिए जरा।
उस वक्त वो अनजाने में एक चलते फिरते जैविक बम की तरह थे, जिससे पूरे विमान में संक्रमण फैलने का कितना भयानक खतरा था।
हाँ,
ये हिस्सा हमें मारबर्ग वायरस से मिलवाता है, जो इबोला जैसा ही घातक है। यहीं पर हॉट जोन, यानी वो जगह जहाँ खतरनाक वायरस मौजूद हो, और बायोसेफ्टी लेवल 4,
उच्चतम सुरक्षा वाली लैब।
हाँ, उच्चतम जैविक रोकथाम स्तर वाली लैब, जैसे शब्दों से हमारा परिचय होता है। इसी हिस्से में डॉक्टर शेम मुसोके की कहानी भी है, जिन्होंने मोनेट का इलाज किया, खुद संक्रमित हुए पर किस्मत से बच गए।
उस खौफनाक शुरुआत के बाद किताब का भाग दूं, द किनशासा हाईवे हमें इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाता है। यहाँ प्रेस्टन हमें 1967 में जर्मनी के मारबर्ग शहर ले जाते हैं।
अच्छा।
वहाँ एक फैक्ट्री में युगांडा से लाए गए हरे बंदरों से कुछ मजदूरों में एक अजीब जानलेवा रक्तस्रावी बुखार, मतलब हेमोराजिक फीवर, फैल गया था। ये दुनिया का मारबर्ग वायरस से पहला आमना सामना था।
फिर कहानी पहुंचती है साल 1976 में, जब दुनिया ने पहली बार इबोला नाम सुना। उस साल एक अजीब संयोग हुआ, अफ्रीका में दो अलग अलग जगहों पर, सैकड़ों मील की दूरी पर, इबोला वायरस के दो अलग अलग प्रकार, मतलब स्ट्रेन्स,
लगभग एक ही समय पर,
हाँ लगभग एक ही समय पर उभरे। एक दक्षिणी सूडान में, जिसे इबोला सूडान कहा गया, ये थोड़ा कम जानलेवा था, और दूसरा उत्तरी ज़ायरे, जिसे अब DRC कहते हैं, में, जिसे इबोला ज़ायरे नाम दिया गया, और ये कहीं ज्यादा क्रूर और घातक था।
प्रेस्टन ज़ायरे वाले प्रकोप पर ज्यादा ध्यान देते हैं, खासकर यांबुकू मिशन अस्पताल में जो त्रासदी हुई। वहां इस वायरस से संक्रमित होने वालों में मृत्यु दर करीब 90% थी। ये तो कल्पना से भी परे हैं।
बिल्कुल, वो बताती हैं कि कैसे ये वायरस शरीर के अंगों को अंदर से गला देता था और भयानक रक्तस्राव होता था। इसमें नर्स मयिंगा की कहानी खास तौर पर दिल दहलाने वाली है, जो संक्रमित होने के बाद राजधानी किनशासा चली गई थी। उनकी कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे सिर्फ एक संक्रमित व्यक्ति भी किसी बड़े शहर में महामारी फैला सकता है। ये हिस्सा इबोला ज़ायरे को अब तक ज्ञात सबसे खतरनाक वायरसों में से एक के रूप में स्थापित करता है। प्रेस्टन इसे एक सच्चा स्लेट वाइपर कहते हैं, मतलब सब कुछ मिटा देने वाला।
यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पाठक ये सोचने लगता है कि ये सब अफ्रीका की दूर दराज की बातें हैं, लेकिन तभी आता है किताब का सबसे लंबा और शायद सबसे रोमांचक हिस्सा, भाग 3, स्मैश डाउन। और कहानी अचानक पहुंच जाती है 1989 के पतझड़ में,
रेस्टन, वर्जिनिया,
जो वाशिंगटन DC का ही एक उपनगर है।
हाँ बिल्कुल।
रेस्टन में एक निजी लैब है, रिस्टन प्राइमेट क्वारंटाइन यूनिट, जो शोध के लिए बंदरों का आयात करती है। अचानक वहां फिलीपीन से लाए गए बंदर रहस्यमयी तरीके से बड़ी संख्या में मरने लगते हैं। लैब के पशु चिकित्सक डैन डालगार्ड को कुछ समझ नहीं आता। वो जांच के लिए नमूने पास ही फोर्ट डेट्रिक, मैरीलैंड में स्थित USMRID भेजते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज,
अमेरिकी सेना की सबसे प्रमुख संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों पर काम होता है।
सही।
और यहीं हमारी मुलाकात होती है किताब के कुछ मुख्य किरदारों से, लेफ्टिनेंट कर्नल नैन्सी जैक्स, USMRID में एक आर्मी पशु चिकित्सक और पैथोलॉजी विभाग की प्रमुख, जो उस समय लेवल 4 हॉट सूट में काम करने की ट्रेनिंग ले रही थीं।
वो स्पेस सूट जैसा?
हाँ बिल्कुल। उनके पति लेफ्टिनेंट कर्नल जेरी जैक्स, जो उसी संस्थान में पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुख थे, और दो नागरिक वैज्ञानिक, वायरोलॉजिस्ट पीटर जार्लिंग और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिस्ट टॉम गीजबर्ट। ये वही लोग हैं जो बंदरों के टिश्यू की जाँच करते हुए उसमें फिलोवायरस की मौजूदगी देखकर चौंक जाते हैं।
और शुरुआती जाँच से लगता है कि ये सबसे खतरनाक प्रकार इबोला ज़ायरे हो सकता है। जरा सोचिए,
वाशिंगटन DC के इतने करीब, एक घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके के पास, दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस। इस खबर से अमेरिकी सेना और स्वास्थ्य अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है।
जाहिर है।
एक गुप्त उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई जाती है। ऑपरेशन का नेतृत्व करते हैं कर्नल सीजे पीटर्स और इबोला के अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर यूजीन जॉनसन। फैसला होता है कि एक बेहद गोपनीय और खतरनाक सैन्य बायोहैजर्ड ऑपरेशन चलाया जाए।
मकसद क्या था उसका?
मकसद उस बंदर घर में घुसकर सभी बचे हुए जानवरों करीब 500 बंदर को खत्म करना और पूरी इमारत को ऊपर से नीचे तक कीटाणु रहित करना ताकि वायरस बाहर ना फैले।
वापरे।
प्रेस्टन ने इस पूरे ऑपरेशन का वर्णन किसी हॉलीवुड थ्रिलर की तरह किया है।
हाँ, वो बताती हैं कि कैसे सेना के जवान और वैज्ञानिक उन भारी भरकम दबाव वाले बायोहैजर्ड स्पेस सूट्स, जिन्हें कैमाटोरियन या रिकल सूट कहा जाता था, में काम करते थे। उन सूट के अंदर घुटन और डर का माहौल कैसा होता था।
सूट के दस्ताने में एक छोटा सा छेद या सुई का चुभना भी भयानक मौत का कारण बन सकता था। बिल्कुल। प्रेस्टन बताती हैं कि ऑपरेशन के दौरान कैसे सूट फटने या सांस लेने की मशीन खराब होने जैसी खतरनाक घटनाएं हुईं। ये वॉशिंगटन DC और शायद पूरे अमेरिका को एक भयानक महामारी से बचाने के लिए समय के खिलाफ एक दौड़ थी। इस जोखिम भरे ऑपरेशन का कोडनेम रखा गया था स्मैशडाउन।
इस रोमांचक ऑपरेशन के बाद आता है किताब का अंतिम भाग, भाग 4, किटुम केव। यह हिस्सा कहानी के नतीजों और कुछ गहरे दार्शनिक विचारों पर केंद्रित है। रेस्टन, ऑपरेशन सफल रहता है, वायरस लैब से बाहर इंसानी आबादी में नहीं फैलता, लेकिन कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है।
क्या?
जब उस बंदर घर में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों का टेस्ट किया गया तो पता चला कि उनमें से कई के खून में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद थे। इसका सीधा मतलब था कि वे लोग वायरस से संक्रमित हुए थे।
अरे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनमें से कोई भी बीमार नहीं पड़ा था। आगे की जांच से पता चला कि रेस्टन में मिला वायरस हालांकि दिखने और जेनेटिक संरचना में इबोला जायरे जैसा ही था, लेकिन वो इंसानों में बीमारी पैदा करने में सक्षम नहीं था।
मतलब नॉन पैथोजेनिक था इंसानों के लिए।
हाँ, मनुष्यों के लिए रोगजनक नहीं था। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली खोज ये हुई कि सबूत इस ओर इशारा कर रहे थे कि वायरस उस बंदर सुविधा के अंदर हवा के जरिए फैल रहा था।
हवा से इबोला, ये तो...
हाँ, ये एक ऐसी बात थी जो पहले इबोला वायरस के बारे में सोची भी नहीं गई थी। माना जाता था कि इबोला सिर्फ शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है।
ये वाकई किताब का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इंसानियत के सिर पर एक भरी हुई बंदूक तान दी थी, लेकिन फिर किसी अनजान वजह से ट्रिगर दबाने से रुक गई, एक चेतावनी देकर छोड़ दिया।
कहानी का अंत होता है प्रेस्टन की खुद की किटुम गुफा की यात्रा से। रेस्टन घटना के कुछ साल बाद वो एक वैज्ञानिक टीम के साथ अफ्रीका जाते हैं, उसी रहस्यमयी गुफा को देखने जहां से चार्ल्स मोनेट को मारबर्ग वायरस मिला था।
अच्छा, वो खुद गए वहां?
हाँ, वो उस अंधेरी चमगादड़ों और अजीब कीड़ों से भरी गुफा के अंदर जाते हैं और जीवन के गहरे आपस में जुड़े जाल पर और उसमें वायरसों की भूमिका पर सोचते हैं। किताब किसी आसान जवाब या समाधान के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि एक गहरे और परेशान करने वाले सवाल के साथ।
सवाल क्या है?
इबोला और मारबर्ग का असली प्राकृतिक स्रोत क्या है? वो कौन सा जीव है जिसके शरीर में ये वायरस स्वाभाविक रूप से रहते हैं, मतलब उसका प्राकृतिक भंडार मेजबान या रिजर्वोयर होस्ट? ये आज भी अज्ञात है।
तो मतलब खतरा भी है।
बिल्कुल। और ये वायरस आज भी हमारे बीच मौजूद है, चुपचाप विकसित हो रहे हैं, शायद अगले मौके का इंतजार कर रहे हैं। प्रेस्टन किताब का अंत इस विचार के साथ करते हैं कि शायद ये उभरते हुए वायरस इस ग्रह पर मानव प्रजाति के बढ़ते प्रभाव और संक्रमण के खिलाफ पृथ्वी के जीवमंडल की अपनी एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है।
वाकई ये किताबों में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। इससे कई गहरे संदेश निकलते हैं। पहला और सबसे स्पष्ट संदेश है हमारी आधुनिक सभ्यता की नाजुकता, मतलब फ्रेजिलिटी ऑफ सिविलाइजेशन। हम सोचते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन एक अकेला अनदेखा वायरस हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं, हमारी अर्थव्यवस्था, यात्रा और व्यापार को हफ्तों में घुटनों पर ला सकता है। रेस्टन की घटना जहां तबाही होते होते बची, इस बात का एक छोटा सा लेकिन डरावना उदाहरण है। हमने कोविड में इसका बड़ा रूप देखा ही है।
दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है प्रकृति का पलटवार, या शायद कहना चाहिए हमारे कर्मों का फल, नेचर्स रिटेलिएशन। किताब ये तर्क देती है कि ये खतरनाक वायरस कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि ये हमारे अपने कामों का नतीजा है।
जैसे
जैसे जैसे हम जंगलों को काट रहे हैं, खदानें खोद रहे हैं, वन्य जीवों के आवासों में घुसपैठ कर रहे हैं, हम उन अनजान रोगाणुओं और उनके वाहक जीवों के संपर्क में आ रहे हैं जिनसे हम पहले सुरक्षित दूरी पर थे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इबोला जैसे वायरसों का उभरना पृथ्वी के जीवमंडल की तरफ से इंसानों द्वारा किए जा रहे विनाश पर एक तरह की प्रतिक्रिया है।
एक और बात जो इस किताब को पढ़ते हुए महसूस होती है वो है एक अदृश्य दुश्मन का मनोवैज्ञानिक खौफ, साइकोलॉजिकल टेरर। ये दुश्मन कहीं भी हो सकता है, दरवाजे के हैंडल पर, हवा में सांस लेने पर,
किसी अपने के स्पर्श में।
हाँ, USMRID की टीम पर जो मानसिक दबाव था, मौत के साए में उन खतरनाक सूटों में काम करने का तनाव, वो इस खौफ को दिखाता है। ये डल हमारे समाज को भी तोड़ सकता है।
लेकिन डर और खौफ के साथ साथ ये किताब इंसानी साहस और बलिदान की कहानी भी कहती है। ह्यूमन करेज एंड सैक्रिफाइस, नैन्सी जैक्स, जेरी जैक्स, डॉक्टर मुसोके, रेस्ट इन ऑपरेशन में शामिल सैनिक और वैज्ञानिक, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी।
बिल्कुल, उनका समर्पण, उनकी बहादुरी।
हाँ, ये भी कहानी का एक अहम हिस्सा है। भारत में भी हमने कोविड के दौरान अपने डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मियों का ऐसा ही जज्बा देखा।
और आखिर में ये किताब हमें विज्ञान की दोहरी प्रकृति के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ हमारा ज्ञान और क्षमता, दूसरी तरफ हमारी अज्ञानता और सीमाएं।
ड्यूअलिटी ऑफ साइंस।
हाँ, विज्ञान हमें वायरस की पहचान करने, उसकी जेनेटिक संरचना समझने और उसे रोकने के तरीके खोजने में मदद करता है, लेकिन साथ ही ये हमें ये भी एहसास दिलाता है कि हम कितना कम जानते हैं।
बिल्कुल, हमें आज भी ठीक से नहीं पता कि इबोला का असली घर कहाँ है या अगला नया वायरस कब, कहाँ से और कैसे हमला करेगा। ये हमें वैज्ञानिक विनम्रता सिखाती है, याद दिलाती है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा मात्र है।
किताब में कुछ पंक्तियां या विचार ऐसे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं और दिमाग में रह जाते हैं। जैसे प्रेस्टन का ये कहना कि एक नए वायरस का प्रकट होना एक प्राकृतिक घटना है, मानव प्रजाति में एक नए वायरस का उभरना एक प्राकृतिक घटना है।
हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। ये वायरस को किसी बाहरी आक्रमणकारी की तरह नहीं बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के एक सामान्य हिस्से की तरह देखता है। दोष वायरस का नहीं बल्कि उन परिस्थितियों का है जो इंसान खुद बना रहा है,
जो उसे फैलने का मौका दे रही है।
हाँ बिल्कुल।
एक और सीधी और असरदार तुलना जो प्रेस्टन करती हैं वो इबोला की भयावहता को तुरंत सामने ला देती हैं। इबोला 10 दिनों में वो कर देता है जो एड्स को करने में 10 साल लगते हैं।
सही कहा, जब ये किताब लिखी गई थी उस दौर में एड्स सबसे ज्यादा डराने वाला वायरस माना जाता था। ये तुलना पल भर में बता देती है कि इबोला कितनी तेजी से और कितनी बुरी तरह से शरीर को तबाह कर सकता है।
और फिर वो थोड़ा दार्शनिक लेकिन बेहद परेशान करने वाला विचार, पृथ्वी मानव प्रजाति के खिलाफ एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कर रही है, या इसी से मिलता जुलता कि एक वायरस किसी प्रजाति के लिए उसे कम करके उपयोगी हो सकता है।
ये विचार हमें हिलाकर रख देता है। ये सुझाव देता है कि शायद धरती के बड़े पारिस्थितिक तंत्र के नजरिए से देखें तो इंसान एक ऐसी प्रजाति बन गई है जिस जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है और ग्रह के संतुलन को बिगाड़ रही है। और इस संदर्भ में वायरस प्रकृति का एक तरीका हो सकता है संतुलन वापस लाने का। यह बहुत ही विनम्र और परेशान करने वाला विचार है।
और वैश्वीकरण के इस दौर में ये पंक्ति शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक और डरावनी है। वर्षावन से निकला एक हॉट वायरस पृथ्वी के हर शहर से महज 24 घंटे की विमान यात्रा की दूरी पर रहता है।
की गारंटी नहीं रही। आधुनिक हवाई यातायात ने पूरी दुनिया को एक संभावित हॉट जोन बना दिया है। अमेज़न के जंगल में या अफ्रीका के किसी गांव में उभरा खतरा कुछ ही घंटों में दिल्ली, मुंबई या लंदन पहुंच सकता है। कोई भी कोना पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। तो इस किताब से मिले सबक आज हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू होते हैं? सबसे पहली बात तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, मतलब पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाती है।
हाँ,
ये हमें समझाती है कि हमारे शहरों में स्वास्थ्य विभाग, NCDC या WHO जैसी संस्थाएं क्यों इतनी जरूरी हैं, किसी भी बीमारी के फैलने पर तुरंत और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना क्यों मायने रखता है, और हाँ, हाथ धोने जैसी साधारण सी आदतें भी कितनी जान बचा सकती हैं।
दूसरी बड़ी बात है पर्यावरण के प्रति हमारी सोच, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। ये किताब सीधे तौर पर दिखाती है कि जंगलों के कटने, वन्य जीवों के आवास बिगड़ने और इंसानी बीमारियों के फैलने में गहरा संबंध है।
हाँ, ये कनेक्शन साफ दिखता है।
ये समझना कि हिमालय में या पश्चिमी घाट में पर्यावरण को हो रहे नुकसान का असर शायद हमारे अपने शहर में किसी नई बीमारी के रूप में दिख सकता है, हमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ पेड़ बचाओ का मामला नहीं, ये खुद को बचाओ का मामला है।
ये हमें जोखिम और वैश्विक जुड़ाव, रिस्क एंड ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। पहले हम सोचते थे कि अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका में होने वाली कोई घटना हमारा क्या बिगाड़ेगी, लेकिन अब हम जानते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में उभरने वाला स्वास्थ्य संकट पल भर में वैश्विक आपातकाल बन सकता है।
बिल्कुल, हमें स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में ज्यादा वैश्विक और सहयोगी रवैया अपनाना होगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जरूरी है।
सही कहा,
हमारे मन में सम्मान बढ़ाती है जो इन अदृश्य दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमें ये याद दिलाती है कि जब हम किसी महामारी के नियंत्रण की खबर सुनते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का गुमनाम त्याग और साहस होता है।
मेरे लिए द हॉट जोन से सबसे बड़ा सबक ये है कि इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है बल्कि उसका ही एक हिस्सा है, और हमें प्रकृति के नियमों का सम्मान करना सीखना होगा। ये किताब हमें हमारी अपनी कमजोरियों का एहसास कराती है और सूक्ष्म जीवों की उस अदृश्य दुनिया की ताकत के प्रति विनम्र बनाती है जो हमसे कहीं ज्यादा पुरानी और शायद ज्यादा ताकतवर है।
एकदम सही। अगर मुख्य बातें समेटनी हो तो, एक, नई उभरती संक्रामक बीमारियां एक हकीकत हैं और एक गंभीर खतरा भी जो काफी हद तक हमारे अपने कामों का नतीजा है।
दो, हमारी आज की आपस में जुड़ी दुनिया खतरनाक रूप से नाजुक है जिसे एक वायरस भी ठप कर सकता है।
और तीसरा ये कि इन खतरों से निपटने के लिए तैयारी, वैज्ञानिक शोध, निगरानी और सबसे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं।
इस किताब में मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात रेस्ट इन वाली घटना थी। ये जानना कि वो वायरस हवा से फैल रहा था जो इबोला के लिए अनसुना था, और फिर भी उसने इंसानों को बीमार नहीं किया, ये किसी चमत्कार जैसा लगता है या शायद एक गंभीर चेतावनी कि अगली बार ऐसा ना हो। ये बहुत रहस्यमयी और डरावना दोनों है।
और मेरे लिए सबसे गहरा असर छोड़ा इस विचार ने कि हम सब असल में एक हॉट जोन में ही जी रहे हैं। खतरा कहीं भी कभी भी उभर सकता है। ये किताब सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये भविष्य की एक झलक है। इसने कोविड-19 से सालों पहले हमें आने वाले महामारियों के युग के बारे में लगभग भविष्यवाणी कर दी थी। ये आज भी उतनी ही जरूरी और पढ़ने लायक है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एफेक्ट्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।